जहाँ विशाल गहरे सागर का तेजोमय सूरज से मिलाप होता है, जहाँ छलकता पानी सूरज की रोशनी को अपने अंदर समेटता है, उसी अरब सागर के किनारे खड़ा है शानदार रंगारंग शहर मुंबई। समंदर की बढ़ती हुई लहरों की तरह उमड़ती रहती है लोगों की भीड़। यहाँ की मजबूत और बुलंद इमारतों की तरह ही मजबूत और बुलंद इरादे लेकर लोग यहाँ आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, इसी में घुल मिल जाते हैं। दरअसल यहाँ की जिंदगी को चकाचौंध करती है सिनेमा की दुनिया, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
एक पुराना कुआं कहीं देखा होता मैंने।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सीता।
भाषण देने से पहले ये भी तो पूछो इसने करतूत क्या की है।
कुछ भी किया होगा, चोरी की होगी, डाका डाला होगा, कत्ल किया होगा।
लगता है आपको अच्छा नहीं लगा।
मुंबई एक जादुई शहर है। यहाँ लोग रातों रात अमीर से गरीब और गरीब से अमीर होते देखे जाते हैं। यहाँ जिन लोगों के हौसले बुलंद और मजबूत होते हैं उनके लिए तकदीर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कामयाबी बिना दस्तक दिए घर में दाखिल हो जाती है। ये मकान उस शेर दिल इंसान का है जिसके हाथों की पकड़ से उसके दिलो दिमाग की चुस्ती का अंदाजा होता है। इस अजीम शख्स का नाम है अशोक कुमार गांगुली, यानी अशोक कुमार जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं दादा मुनि।
मैं खंडवा का रहने वाला हूँ। हमारे फादर, ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, अंकल के लड़के सब वकील थे। तो घर में खंडवे में करीब 5 वकील थे जो काफ़ी दूर के प्रैक्टिस करते थे और खंडवे की पॉपुलेशन बहुत कम है, 25,000 की है उस वक्त, अब तो लाखों हो गए। तो हमारे फादर ने मुझे कहा कि तुम जब मैं कॉलेज पास कर गया, ग्रेजुएट हो गया, तो नहीं कर तो लॉ करो। तो लॉ उन्होंने कलकत्ते से किया था, मुझे भी कलकत्ता भेजा। कलकत्ते में प्रिंसिपल थे उस वक्त हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका भूल रहा हूँ मैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे वो, मेरे पत्नी के रिलेशन थे, वो प्रिंसिपल थे वहाँ के। बाद में कश्मीर में उनका हार्ट अटैक हुआ, वहाँ मारे गए, मर गए। तो उनके पास गया मैं, मैंने कहा देखिए बात ये है, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन लॉ बिकॉज देर आर 5 लॉयर्स इन द सेम हाउस, मैं क्या करूँ आप बोलिए, बस तुमको काम इंटरेस्ट है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ फिल्म में डायरेक्टर होना या प्रोड्यूसर होना या कुछ इन्हें टेक्निकल लाइन। बोले एक काम करो तुम मॉर्निंग का क्लास ज्वाइन करो 7 से 8 तक, लॉ कॉलेज का 1 घंटे का क्लास होता था, क्या 7 से 8 तक ज्वाइन करो, 7 तक ज्वाइन करने के बाद तुम चले जाओ फिर देखा करो पिक्चर सब जो तुमको सोचना है लिखो। ये मेरी शुरुआत हुई फिल्म की। इस वक्त क्या हुआ, हमारे जो ब्रदर इन लॉ थे मुखर्जी, शशधर मुखर्जी, वो MSc पास करके बम्बई आए। बम्बई आके उनने भी सोचा कि क्या करें, प्रोफेसर होना ना सर, उन्होंने कहा हम फिल्म में काम करेंगे। तो फिल्म में वो साउंड इंजीनियर हुए और उनने मुझे चिट्ठी लिखी कि अगर सुना कि तुम वकालत करना नहीं चाहते हो तो अगर फिल्म में काम करना है तो एक काम करो, हिमांशु राय हैं जर्मनी से, उनका इंटरव्यू दे दो उनको और वो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आके ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है चलो आज चले आते हैं। 33 रुपये में जो लगे टिकट खंडवे कलकत्ते से बम्बई जाने में 3rd क्लास में, तो वो टिकट आए आए आके उनसे मिले, उनने कहा कि चलो इंट्रोड्यूस करा दें। तो मैं हिमांशु से इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने देखा कहा तुम एक्टिंग अच्छा करो। मैंने कहा नहीं एक्टिंग के लिए मैं आया नहीं हूँ। तो क्यों, मगर देखिए मैं एक्टिंग देख लेता हूँ लोग क्या करते हैं फिर मैं आपके पास आऊँगा। शाम तक उनके पास रहे, उनका ऑफिस था सब चर्चगेट में, तो वहाँ से मैं जाकर मुखर्जी ने कहा कि चलो देखे पिक्चर क्या क्या होता है। इधर उधर देखते रहे देखते रहे देखते रहे, देखने के बाद दूसरे दिन मैंने कहा देखिए हिमांशु राय से कहा कि देखिए एक्टिंग में देखा हूँ जो काम करते हैं कुछ कल्चर्ड लोग नहीं हैं, यानी मैं यही तो नहीं कहना चाहता कि प्रोस्टिट्यूट्स हैं पर नॉट वेरी इतने कल्चर्ड नहीं है, बोलने वाले अच्छे नहीं हैं, लिखे बड़े अच्छे नहीं हैं, और हीरो बनते थे उन्हीं के रिश्तेदार लोग, तो मैं वो तो निकलना चाहता मैं ही, तो बोले ठीक है तुम एक्टिंग मत करो टेक्नीशियन हो जाओ। मैंने कहा थैंक यू, मैं हो गया टेक्नीशियन। टेक्नीशियन क्या, कैमरा, साउंड, एडिटिंग, वो हिमांशु ऐसा काम कराते थे ताकि सब काम करो, तुम जो भी कुछ भी काम करो, एक्टर हो तो भी तुम्हें एडिटिंग करना पड़ेगा, जो भी काम कराए हो, तो हिमांशु ही वो उनका सब। आज जो जो लोग काम कर रहे हैं दे शुड बी थैंकफुल टू हिमांशु राय, क्योंकि कल्चर्ड पीपल उस वक्त आते नहीं थे, लिखे पढ़े आदमी आते नहीं थे उस वक्त। तो जब देखा उनने, मैं कैमरा में काम करने लगा वीर सिंह के अंडर, जिसने महल उतारा मेरे लिए बाद में। मैं वीर सिंह लोग जर्मन टेक्निक बहुत अच्छा था, टेक्निक अच्छा माने मतलब 5 बजे उठते थे और बिल्कुल टाइम टू टाइम काम उनका बराबर होता था, वेरी रेगुलर पीपल और बहुत ही सॉलिड काम करते थे, दूसरों पर माफिक नहीं थे। तो मैं काम करने लगा वहाँ उनके साथ कैमरा में, झगड़ा भी हो गया उसके साथ क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करने लगा काम में, इंटरफेरेंस में कैमरा ले लूँ और कुछ करूँ, लोग चिढ़ गए, इसके बोले इसको और कहीं डालो, लेबॉरेटरी में डाल दिया मुझे। लेबॉरेटरी उस वक्त ऑटोमेटिक लेबॉरेटरी शुरू हो गया था, वहाँ डाल दिया, वहाँ भी काम किया, वो भी जर्मन टेक्नीशियन था वहाँ उसका। उसके बाद एक दिन मैं डब्बे लेके जा रहा था, पैंट मेरा भीगा हुआ, हाथ पे सराशिर पड़ा हुआ, हिमांशु राय के बोला इधर। मैंने कहा, तब डब्बे लिए खड़ा था, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कोई ये सब एडिटिंग करना। बोले एक काम है तुमसे, हमारा जो हीरो है नजमुल हुसैन वो छोड़ के चला गया, तो हमारा स्क्रिप्ट तैयार है, हमें समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहते हो, तो हीरो है नहीं इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हीरो का काम करो। मैं तो एक तिगड़ी घबरा गया, मैंने कहा क्या करें, एक तो मैं दुबला सा था और फिर हीरो का काम तो करूँगा ही नहीं। मैंने कहा छोटे मोटे रोल है तो कर लेता, तो मैंने कहा मेरे से होगा नहीं। बोले होगा नहीं, हम लोग दैट यू लीव इट टू अस, हम लोग को छोड़ दो, हम लोग करा लेंगे।
मूरख प्यार 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 तेरा कौन है?
कस्तूरी मेरी बात मानो, चलो कहीं भाग चलो।
नहीं नहीं प्रताप, ये मुझसे ना होगा, भाग ने हमारा साथ नहीं बदा, तुम वामन हो, मैं अछूत।
अब वो अछूत करने में काम तो करता था मैं, लेकिन डायलॉग बोलते नहीं बने। ये आप देखेंगे मैं डायलॉग बोलना सीखना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं अछूत करने ऐसी चल गई, उसके बाद जीवन नया ऐसी चल गई। मुझे एक बात याद है, इस वक्त इम्प्रूव होने के पहले जब मैंने पहला शॉट किया था जीवन नैया में, इतना नर्वस था मैं कि हमको विंडो से उछल के आना था, देवी करानी हीरोइन थी और मसी हीरो था, इन दोनों को अलग करना था, उन्होंने डायलॉग बोले थे मैं अलग करना था बस। तो हमको ऑस्टन डायरेक्टर ने कहा कि देखिए एज ए क्लैप, यहाँ से प्ले क्लैप होगा, क्लैप पैको साउंड स्टार्ट, कैमरा स्टार्ट एंड देन क्लैप, क्लैप के बाद ये लोग डायलॉग बोलेंगे, तुम 10 गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकदम उछल के आना, वो डायलॉग तब तक ख़त्म हो जाएगा, उछल गया ना दोनों को सेपरेट करना, बस यहाँ शॉर्ट है। मैंने कहा ठीक है, नर्वस बॉडी नर्वस, ऐसा ही नर्वस क्या। तो उन्होंने शुरू हो गया, कैमरा स्टार्ट, सुन रहा हूँ मैं, विंडो को तब बैठा हुआ, साउंड स्टार्ट, शूट शूट, जो क्या मैं विंडो से ऊपर उछला, उछल के उन दोनों के ऊपर जाके गिरा, और उस वक्त उम्र कम थी सब, यहाँ से 8 फीट उछल के दोनों के ऊपर गिरा, तो देवी का रानी उधर फेंका गई और जो विलन था इधर फेंका गया, और मैं अकेला खड़ा हूँ। कट का उसने कहा यू डिडंट काउंट इन, मैंने कहा फॉरगॉट मी सर, डू इट अगेन। फिर क्या हुआ, तो वो जो विलन था हो 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 कर रहा था बैठ बैठ, बोले क्या हुआ, वो पैरिस ही था नहीं उसका, डॉक्टर आया, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर बुलाया, उसका ये जो घुटने का जो हड्डी है ना फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया का मतलब अब वो चल ही नहीं सकता। मैंने कहा चलो 4 महीने की छुट्टी हो गई अब कुछ। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो 3-4 पिक्चर के बाद झूला आया, झूला में डायलॉग मैंने अच्छा बोला, एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई।
नमस्ते।
नमस्ते।
माफ कीजिए ये गाना आपने कहा सुना?
जी कल रात एक भिखारी इधर से गाता हुआ जा रहा था।
भिखारी?
जी हाँ। क्यों आप हंसे क्यों?
यूं ही। आपको गाना पसंद है?
जी हाँ बहुत।
शुक्रिया। देखिए मेरी चिट्ठियाँ दे दीजिए, लाइए।
देखो कह दूंगे हाँ हाँ देखो कह दूंगे तुम्हारे मन की बतिया, तुमने चोरे चोरे भेजे हमें पतिया, तुमने चोरे चोरे भेजे हमें पतिया। देखो कह दूंगे हाँ हाँ देखो कह दूंगे तुम्हारे मन की बतिया।
उसके बाद किस्मत आया, किस्मत में डायलॉग भी बेटर आया, एक्टिंग भी बेटर आया, लेकिन वो क्लास नहीं आया।
तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया।
क्लास आया मेरा, समझ आई मुझे, संग्राम में, संग्राम में मैं बिल्कुल समझ गया कि क्या करना
चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, इसलिए शादी करके मुझे दासी बनाना चाहती हूँ। कांता तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया, तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया, तुमने अपने पिता की ममता ठुकराई और अपने आप को।
कांता यकीन करो मैं तुम्हारे बाबूजी के सामने हमेशा ईमानदार रहा हूँ। इसी ख्याल से कानून तोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपने और मेरे प्रेम की इज्जत करके मेरे साथ चलोगी।
अब तुम किस मुझे प्रेम की इज्जत कर रहा करते हो?
कांता तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी।
आप देखेंगे बहुत थोड़े गाने मैंने गाए हैं फिल्म में, आप ये नोटिस करके देखिए। लोग भट से गाने गाते, ऑफ कोर्स गाने से पॉपुलरिटी बढ़ती फिल्म की, गाने से ही पॉपुलर होता है।
कैसे मैंने दैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने दैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहिनी नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने दैन बिताई।
महल के जो गाने थे उसके लिए मैंने कहा चितलकर से, चितलकर का रामचंद्र चितलकर, मैंने कहा कोई गाना अच्छा चाहिए, कोई लड़की अच्छी चाहिए। तो मैंने कहा मैं एक लड़की जानता हूँ लता मंगेशकर करके, छोटी लड़की 12-13 बरस की, गाती बहुत अच्छा, ले आओ मेरे घर लाओ। दोनों बहनें आई, आके गाना गाया, मैंने कहा ठीक कर लो, अच्छा आएगा आने वाला, लेट फेमस लेजेंडरी सॉन्ग आएगा आने वाला। वो ठीक हुआ, पहले तो रिहर्सल हुआ, फिर मैंने सुना जाके साउंड रूम में, मैंने कहा बहुत अच्छा, तो बोले कि मैं थक गई हूँ मेरे को चॉकलेट दी। हाँ मैंने कहा चॉकलेट लड़की को, उसको चॉकलेट दिला दिला के गाना गा दी थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि एक गाना है, गाना तो नहीं है, इज अ रैप सॉन्ग, मैं अगर रहता हूँ किसको अच्छा लगेगा? बोले ना लगे आप कह दीजिए। मैंने कहा ठीक है चल चल चल। वो रेलवे गाड़ी के हैं वो क्या है कि रेलगाड़ी चल 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 नीचे वाले स्टेशन बोल रुक 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 कोई गाना नहीं है अरे मैं
ठड़क भड़क ले खुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पर डंडी टीले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक।
और ये सुन के आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने एक तबले का कोई उस्ताद आया था उसको रिकॉर्ड किया था अपने घर पर और मुझे वो टेप भी उन्होंने भेजा था। नहायत ही अच्छा तबला नवाज कोई था जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उससे उनका शौक़ का अंदाज़ा हुआ कि लय और ताल को भी वो कितना सराहते हैं कितना उस पर लुत्फ लेते हैं उसका।
दादा मुनि ने किस किस किस्म के रोल्स किए हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, अलग अलग पहलू ज़िंदगी के देखे, झूला बंधन कंगन वहाँ से लेकर फिर किस्मत में वही आदमी मॉड हीरो, वहीं से फिर उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते जाकर महल और फिर मॉडर्न बिल्कुल ही हौड़ा ब्रिज और फिर पाकीज़ा भी और अलग अलग स्कूल, बिमलदा की पिक्चरें, ऋषिदा की पिक्चरें, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ आशीर्वाद वगैरह, ऐसा कैरियर स्पैन मैं समझता हूँ बहुत बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा ज़िंदगी में।
उनका काम देखा, क्योंकि मैं खुद हिंदुस्तानी पिक्चर ज़्यादा नहीं देखे थे लेकिन उनका काम देखा, इट वाज एज फ्लुएंट जैसे कि वेस्टर्न स्टाइल में जो वेस्टर्न आर्टिस्ट करते हैं, किस्मत और शिकारी और चल चल रे नौजवान।
दादा मुनी, आई हैव ट्रेमेंडस 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 रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर दादा मुनी। इनफैक्ट दादा मुनी गेव मी माय फर्स्ट ब्रेक इन द फिल्म्स, अ ब्रेक इन द रियल सेंस व्हिच पुट मी ऑन टू द मैप ऑफ द इंडियन सिनेमा।
जिस वक्त महल बन रहा था उस वक्त बॉम्बे टॉवर्स के पिक्चर भी बन रहे थे, ये भी दूसरे पिक्चर बन रहे थे, एक जिद्दी जिसमें मैं काम करने वाला था और इसमें चुगताई ने स्टोरी लिखी थी, शाहिद लतीफ ने लिखी थी, वो दोनों मिलकर लिख रहे थे। उस वक्त मैं बाय चांस मैं बाहर गया थूकने के लिए या सिगरेट फेंकने के लिए, देखा एक लड़का बैठा हुआ है गार्डन के कुंवारी के ऊपर, बड़ा खूबसूरत लड़का। मैंने क्या भाई, बोले मिस्टर गंगोली मेरा नाम देवानंद है, मैं एक पिक्चर किया वो चली नहीं है, कैन यू गिव मी ए चांस यार। तो मैंने देखा लड़का खूबसूरत लगता है, मैंने कहा ठीक है तुम बैठो अभी तरफ। मैं जाके उनको बोला कि भाई जो तुम मेरे को रोल दे रहे हो मैं ये रोल में उसको देना चाहता हूँ, किसको मैंने कहा बुलाता हूँ उसको, आए बुलाया भितराओ, वो देख के चला गया, ही वो कोई जानता देख के चला गया। तो नहीं नहीं आपको जो दे रोल दिया वो कैसे करेगा, बोले कर लेगा तो आप कोशिश तो करो। और अशोक साहब मेरे को अशोक साहब कहते, अशोक साहब वो ये आइडिया अच्छा नहीं है और इसमें चुकता है वो वेरी मच अगेंस्ट। मैंने कहा एक दिन शूट करके देखो, एक दिन शूट किया तो एक टेक एक शॉट का 8 टेक लिया देवानंद का। और मैंने कहा आप देखिए जाके क्या कर रहा है, मैं गया सेट के ऊपर, जब 8 टेक शुरू किया तो मैंने कहा तुम उसको बता तो नहीं रहे हो क्या है, आगे पीछे बता दो सही। मैंने कहा सुनो देव ये आगे है ये पीछे आप तुम करो, फट से कर दिया उन्होंने। मैंने कहा तो समझाओ तो सही, तो कर दिया करे कर, एक टेक में हो गया तो वो लोग मान गए।
तुम इस तरह डर क्यों रही हो शालू, मैंने तो आज तक तुम्हें किसी बात के लिए टोका नहीं। अगर मुझे मालूम रहता कि तुम किसके साथ जा रही हो और कब लौटोगी तो मैं चिंता न करता। दरअसल बात ये विनय, शालू मेरी इकलौती बहन है और तुम तो जानते हो एक बार ये बेचारी धोखा खा चुकी है।
मुझ पर भरोसा रखिए भाई साहब, मैं उनमें से नहीं जो सगाई करके भाग जाते हैं। आप आशीर्वाद देंगे तो मैं हमेशा के लिए इनका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ।
उसके बाद बॉम्बे टॉकीज तो खैर बंद ही हो गई। बॉम्बे टॉकीज बंद होने के बाद हमारी पिक्चर शुरू हुई फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में बहुत कुछ करने लगा। फ्रीलांसिंग में क्या किया, देखा कि बहुत सी चीज़ें जो है मैं करता नहीं था वो अब करना पड़ रहा, अब खुद अपने हाथ पर आया। वहाँ पर लोग जब बॉम्बे टॉकीज में था तो लोग हमको सजेस्ट करते थे, यहाँ कोई सजेस्ट करने वाला नहीं, खुद करना पड़ा। खुद करने से कई चीज़ें जो है मैं इम्प्रूव कर गया, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया मैंने संग्राम में। उस वक्त चोपड़ा है, बी आर चोपड़ा, वो आए बोले कि मैं रेफ्यूजी हूँ, मेरा एक पिक्चर कर दीजिए। मैंने कहा कौन डायरेक्ट, कौन करेगा?
मैंने कहा साहब मैं डायरेक्टर, आप डायरेक्टर हैं। बॉम्बे से यानी लाहौर से रिफ्यूजी होकर आए, कोई आपका एक्सपीरियंस एज ए डायरेक्टर या एज एन असिस्टेंट या कुछ? मैंने कुछ नहीं। कहता मेरी बड़ी मुसीबत है, इस वक्त मेरी पोजीशन इस वक्त बिल्कुल टॉप की, तो मैं ऐसे बिल्कुल एक ऐसे आदमी के साथ जिसको कि कुछ पता नहीं है फिल्म का और डायरेक्शन का इल्म ही नहीं है, उसके साथ मेरा करना ज़रा मुश्किल लगता है। मैंने कहा मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं आया इसी बात से, सिफारिश से आया था कि अगर आप सुन लें तो कुछ बात नहीं है, बट एनीवे आपका मैं ये बात मानता हूँ कि आप क्यों एक नए आदमी से काम करेंगे जबकि आप इतने बड़े स्टार हैं टुडे। ठीक है मैं चलता हूँ। राम जाने क्या उनको दिमाग में उनके आया कि अभी तुम कहाँ जाओगे, यहाँ से घर जाऊँगा और कहाँ जाना, मैं वर्सोवा में रहता हूँ। कहता अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो चलो मेरे साथ बॉम्बे टॉकीज। मैं हैरान क्यों ये कह रहा है, और कहने लगे कि वो जो तुम बना रहे हो स्टोरी उसकी स्क्रिप्ट है तुम्हारे पास? मेरे पास है मगर यहाँ नहीं है, मगर मुझे याद है और मैं डायलॉग के साथ बोल सकता हूँ अगर आपको सुनना हो तो। कहता बॉम्बे टॉकीज चलते हैं बात करें। बॉम्बे टॉकीज चले गए और वहाँ जा कर के अपने कमरे में मुझे ले गए, मैंने स्टोरी सुनाई। स्टोरी जब सुनी तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जिस तरह से सुनाई है इसी तरह से पेश कर सकते हो? मैंने कहा जी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आई विल ट्राई।
सब ने कहा कि भाई रेफ्यूजी चलो करो, रेफ्यूजी के लिए किया पिक्चर। स्टोरी क्या, स्टोरी उन्होंने सुनाई, स्टोरी थी वेंडेटा मेरी कोरेली की, उन्होंने इंडियनाइज किया था और मेरे को अच्छी लगी कहानी। मैंने कहा भाई मैं करता हूँ तेरा, मैं करता हूँ। और वो तस्वीर जो बनी उसमें एक मज़ेदार बात हुई,
हमने एक उसका लास्ट शॉट ले रहा था दिन का, लंबा शॉट था, ये अपने कमरे से बाहर निकले, छड़ी थी इनके हाथ में, ये बस जज का रोल कर रहे थे, इनकी बीवी थी कुलदीप कौर, तो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था ये, बीवी आ गई उसको, तो उसने कहा कि वफादारी सीखनी हो तो कुत्ते से सीख। तो बीवी कहती है कि तो इसका मतलब यह है कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट आपके कुत्ते से लेना पड़ेगा। हंसता है, चल पड़ता है, बीवी फिर पीछे आती है, तुम्हारी ठाई ठीक नहीं है सर, और थोड़ा इस किस्म के डायलॉग थे चल रहे। और वो दूर से मैं बैठा हुआ था ट्रॉली के ऊपर, तो मैंने कहा अशोक साहब जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा मुझे,
आप इस तरह से कीजिए। मैंने कहा तुम करके दिखाओ।
मैंने कहा देखो जी मैं एक्टर तो हूँ नहीं, मगर जो मेरे को कहने का मतलब ये है कि जो डायलॉग आज बोल रहे हैं इसका असर कहानी के सेकंड हाफ में आना चाहिए, तो लहजा वो होना चाहिए, मैं बोल के बता देता हूँ अपनी तरफ से। मैंने बोल के बताया,
मैंने सोचा कि ये दिखाना चाह रहा सबके सामने कि ये मेरे को कंट्रोल करता है। मैं कहा ठीक है चलो तुम जो बोलते हो कर, मैं दोनों तरफ से करूँगा, अपने तरफ से करूँगा और एक तुम्हारे तरफ से करूँगा, जैसी आपकी मर्जी, कुछ कर तो नहीं सकते थे वो।
जब ओके हो गया तो पैकअप कर रहे थे हम लोग, तो ये अशोक साहब मेरे पास आए, वो कहते हैं भी तेरा यहाँ पर आज सुना है पहला दिन है शूटिंग का, तुम्हारा सारा यूनिट आया हुआ है, तो एडिटर है आया हुआ? मैं कह जी हाँ, वो तो मेरा बड़ा दोस्त है।
मैंने कहा कितने बजे तुम्हारा रशेज आएगा? मैंने आप जो बोले, मैंने सुबह 8 बजे रशेज चाहिए, मैं देखूँगा। दोनों देखा मैंने, देख के मैंने साफ देखा कि उसने जो सजेस्ट किया था वो अच्छा था, तो मैंने उसको बुलवाया। मैंने कहा चोपड़ा को बुलाओ, तो वो आए बिल्कुल कपते हुए, जैसे प्रिंसिपल के पास लड़के जाते हैं बुलाया जाता उस तक कब तक वो गाया। मैं उसको देखा, मैं क्या नाम है तुम्हारा? बलराज कुछ कुछ नाम बोला, याद नहीं आ रहा। मैं कहा तुम्हारे फादर तुम्हें क्या कहते हैं? किस तरह से बोलते हैं? फिर मैं भी तुम्हें यही कहूँगा एंड शेक हैंड्स विद मी, तुम्हारा ठीक था। हाँ, आपको अच्छा लगा था? मैंने कहा तुम्हारा ठीक था, अब तुम जो बोलोगे वैसे करूँगा।
मैंने पहली फिल्म आपकी देखी थी अछूत कन्या, और फिर पता नहीं कितनी फिल्म देखी, 50 फिल्में देखी होंगी। उसके बाद जब इकट्ठे काम, मुझे मेरी हिम्मत नहीं थी, मुझे चोपड़ा सा नहीं नहीं जाओ करेंगे वो तो बताओ रोल। अच्छा उस रोल में वो बताइए,
चोपड़ा ने बोला था?
चोपड़ा ने। अशोक कुमार जब नए नए आए थे, जो मैं कह रहा था अछूत कन्या कंगन बंदन, तो उसके सारे गाने खुद गाते थे। और एक फिल्म बनी थी चल चल रे नौजवान, वो लिरिक्स भी इन्होंने लिखे थे। और इसी तरह हमारी एक फिल्म थी शौकीन, हम सब लोगों ने कहा कि आप तो गाना गाते थे, एक गाना गाइए। तो उन्होंने गाना भी गाया जो रिकॉर्ड भी हुआ पंचमदा आर डी बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में।
अच्छा भाई, कब मिलते हो, कब जा रहे हो? ये गाने में कोई बहुत थोड़े लोगों ने, जैसे एक तो बेचारे मर गया जो राज कपूर के गाने देते थे, क्या नाम था उसका, साइलेंस, बहुत से गाने लिखता था वो। उसमें गाना उसने लिखा था बंदिन में एक जगह जगह गाना लास्ट में देता है, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिल की किताब से मेरा नाम मिटा लो। क्या क्या लवली आइडिया है, ऐसे है जो है ना, अब मिलते कम है, आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं।
मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा,
और किसने मर्तदम मेरे नाम एक खत लिखा था जो 17 साल बाद मुझे मिला है, उसमें मेरी बेटी का जिक्र है। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहां है।
तो आप उसे देखने आए हैं?
मैं उसे ले जाने आया।
अच्छा, तो आप ले जाने आए हैं।
हेलो हेलो, आप? दिस इज माय अंकल्स होटल।
ओह, इसको हिंदी?
नहीं, हमको नहीं आता।
लेकिन आप बोल तो रही हैं।
ओह नो, इट्स ऑल रॉन्ग।
ज्यादा गलत नहीं है, आप मुझसे हिंदी में बात किया कीजिए।
But he's always been a great man. हर चीज में शतरंज भी खेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ घूमते फिरते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इंसान को करना चाहिए।
आप सब तो जानते हैं कि वो एक बहुत ही गुणी डॉक्टर भी थे, और जो कि सेल्फ टॉट होम्योपैथ थे वो, और इतनी प्रबल थी उनकी शक्ति कि आज भी वो किसी को देखेंगे और देखते ही वो बता देंगे कि तुम्हें ये रोग है और इसकी ये दवा करनी चाहिए।
एक औरत को कैंसर हो गया था पेट का, उसको मैंने दवा देना शुरू किया था यहाँ रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली, 8 साल पहले दवा देना शुरू किया था। वो ठीक हो गई। ठीक हो जाने के बाद हॉस्पिटल वाले बोले, अरे आप ये सब करते क्या? मैंने कहा मेरे होम्योपैथी मैं करता हूँ। वो आई बोले कि मैं अब काम तो नहीं करूँगा, बुढ़िया हो गई थी, बोला अबाउट 70 ईयर्स की, मैं यहाँ मैं नर्सिंग करूँगी। नर्सिंग करते करते सातवें दिन क्या हुआ, उसको फिर से दर्द हुआ और बिस्तर पर सो गई, शाम को मर गई। मैं तो बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ, इतने देर से ट्रीट किया, इतने देर जिंदा रही, मेरे को समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने लिखा लंदन में, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने फ़ोन किया हमको, तो क्या हुआ था, मैंने कहा ऐसा ऐसा ट्रीट किया वो मर गई। बोले तो देखो भाई, एक चीज़ विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान को था किसे ले जाए। तो मैंने कहा अगर भगवान का यही है सब लोगों को ट्रीट क्यों करते हैं, अगर भगवान की अगर ये इरादा है कि उसे मारना है तो हम ट्रीट क्यों करते। बोले ये तुम्हारे कहने की बात नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है ट्रीट करना, फिर भगवान जो करे वो करे।
दादा मुनि कोई एक जनरेशन के साथ तो रहे नहीं, उनकी खासियत और उनकी खूबियत यही रही है कि वो जनरेशन बदलते गए लेकिन दादा मुनि वही के वहीं रहे और उन्हीं के साथ साथ वो चलते आए। तो वो शुरू शुरू में दिलीप साहब के साथ जो एक ज़माना था उसमें आए और उनका एक अलग ही एक कैरेक्टर था, एक उनका अलग ही एक माहौल था। और हर जनरेशन जैसे जैसे जनरेशन बदलता गया लेकिन दादा मुनि जो थे वो उसके साथ साथ चलते आए। ऐसा कहना कि दादा मुनि का कोई एक ट्रेंड रहा या एक कोई जनरेशन रहा ये सही नहीं होगा, क्योंकि शायद वही एक कलाकार हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जो आज के कलाकारों को लेकर के और जितने पुराने के कलाकार हैं सबके साथ उन्होंने काम किया। इतनी महान हस्ती, इतने महान कलाकार, लेकिन उनका जो रवैया था वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सादगी थी उनके उनके व्यवहार में। चाहे छोटे से छोटा कलाकार हो, चाहे बड़े से बड़ा कलाकार हो, वो हमेशा उनको बहुत ही इज्जत देते, कभी अपना जो बड़ापन था उनका वो कभी इजहार नहीं करते उनके ऊपर। और अपने उनका व्यवहार जो था वो अपनी उम्र से हमेशा कम रहा है, वो एक बच्चे की तरह घुल मिल करके सबसे बात करते, मिलते जुलते।
अमर शोक
ना,
अमर रूह
पा,
सबसे अच्छी
माँ,
सबसे बुरी
माँ,
सबसे मोटी
माँ,
सबसे दुबली
माँ,
सबसे पा
जी माँ।
एक जिज्ञासा जो रहती है बच्चे की जानने की कि ये शर्ट का बटन ऐसा क्यों है, ये कलम आपने क्यों लगा रखा है, ये इस तितली का रंग यूँ क्यों होता है, इस तरह की चीज़ें जो थी वो हमेशा दादा मुनि पूछते जाते थे। बड़ा ही एक एक्टिव माइंड उनका, बच्चों की तरह।